नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस 17 जुलाई के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत है। हरे कृष्णा। और जैसे हमने आपको कहा था पिछली बार कि इस बार हम आपको जगन्नाथ जी के विशेष लीला के बारे में बताएंगे। उस लीला का नाम क्या है? नवकलेवर लीला। हाँ, नवकलेवर का मतलब क्या होता है? नव यानी कि नया, और कलेवर यानी शरीर, बॉडी। तो जगन्नाथ भगवान ऐसे एक ही भगवान है। जितने भी भगवान हम लोग देखते हैं, रंगनाथ में है भगवान श्री रंगेश्वर जी, द्वारका में द्वारकाधीश जी हैं, वृंदावन में गोपीनाथ जी हैं, बांके बिहारी जी है, राधा वल्लभ जी हैं, कृष्ण बलराम हैं, लाडली लाल बरसाने में है, ये सब भगवान वैसे रहते हैं। उनका जो विग्रह है वैसे रहता है, एक बार स्थापन किया तो परमानेंटली वैसे रहते। लेकिन जगन्नाथ जी का विग्रह जो है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो जगन्नाथ पुरी में होता है, वो हर कुछ साल बाद में बदली होता है, उसको कहते हैं नवकलेवरम। मतलब भगवान अपना शरीर बदली कर देते हैं और नई मूर्ति उत्पन्न होती है। तो ये नई मूर्ति जो होती है, ये भी उसका एक सिस्टम है पूरा। वो सिस्टम ऐसा है कि जैसे कि लास्ट सेंचुरी में, हाँ, 1901 से 2000 तक, ये कितनी बार हुआ है? 1931 में एक बार हुआ है, 1950 में एक बार हुआ है, 1969 में एक बार हुआ है, 1969 और 1977 और उसके बाद 1996, केवल 5 बार हो गया है। एवरेज 19 साल का है, लेकिन 1969 से 77 तक केवल 8 साल में चेंज हो गया है। उसका सिस्टम यह है, आप सबको पता है ना अधिक मास क्या होता है? कितने लोगों को पता है अधिक मास क्या होता है? बहुत कम लोगों को मालूम है। ओके, तो अधिक मास 2.5 साल में एक बार आता है। अधिक मास का मतलब है एडिशनल मंथ। हर साल में कुछ दिन बचते हैं, वो 2.5 साल में उसके 30 दिन पूरे हो जाते हैं। बड़ा लंबा मैथमेटिक्स सेवन ही बताएंगे उसको, लेकिन हर 2.5 साल में एक बार एक महीना 30 दिन का एक्स्ट्रा आता है। तो वो चतुर्मास चल रहा है अभी। कितना लोगों को पता है चतुर्मास चल रहा है? चतुर्मास का मतलब है कि साल में 12 महीने होते हैं, उसमें से 4 महीने बहुत पवित्र होते हैं। आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, 4 महीने होते हैं। तो ये 4 महीने में से कोई तो भी एक महीना अधिक आता है, बाकी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अधिक नहीं आते। आषाढ़ में से आएगा या तो भाद्रपद में से आएगा, या तो अश्विन में आएगा, तो कार्तिक में आएगा। तो इस साल कौन सा महीना अधिक मास है? हाँ, भाद्रपद, करेक्ट। और इस साल का अधिक मास जो है वो 18 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेगा, और इस मंथ को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। कृष्ण भगवान ने कहा कि इस महीने में जो भी मेरी पूजा करेगा, उसको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा इस जीवन के अंत में। और इस महीने में भगवान ने कहा कि जो भी व्रत नहीं करेगा, कोई व्रत मतलब कोई नियम नहीं लेगा अपने जीवन में, फॉर एग्जाम्पल अभी हम 16 माला जप करते हैं तो अधिक मास में हम 2 माला एक्स्ट्रा करेंगे, या अधिक मास में अगर हम उपवास करेंगे तो केवल फल पर करेंगे, या अधिक मास में हम रोज 1 घंटा स्क्रिप्चर से पढ़ेंगे, मतलब श्रीमद् भागवत भगवद गीता में से पढ़ेंगे, इसको कहते हैं व्रत, जो हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपनी इच्छा से और महीना भर उसको फॉलो करते हैं। भगवान ने कहा कि इस महीने में अधिक मास के अंदर जो कोई व्रत नहीं लेगा, नहीं करेगा, नहीं पालन करेगा, तो पिछला जितना पुण्य उसने किया है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि हम पिछला पुण्य को बचा के रखने के लिए इस महीने में कुछ करें, और लाभ ही लाभ है उसके अंदर। अगर हम 16 माला कर रहे हैं तो 17 माला करने में कोई नुकसान नहीं है, एक ही माला एक्स्ट्रा करना है। दिन में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, स्टार डस्ट, फिल्म स्टार सब पढ़ते रहते हैं, उसके अच्छा भगवान का किताब बाइबल, कुरान, भगवद गीता, भागवत, उसको पढ़ सकते हैं 15-20 मिनट स्टडी कर सकते हैं, सुन सकते हैं भगवान का लेक्चर। तो ये जो अधिक मास है ये टर्न बाय टर्न आता है, कभी भाद्रपद आता है, कभी कार्तिक आता है, कभी कुछ आता है। जब वो आषाढ़ का आता है उसको भी कई साल लगते हैं, हाँ हर 2.5 साल में आषाढ़ नहीं आता है, कभी कभी 10 साल के बाद में, कभी कभी 19 साल के बाद में आता है। तो जिस साल में अधिक मास का महीना आषाढ़ का होता है उसको कहते हैं ब्लू मून, मतलब आषाढ़ महीने में 2 बार चंद्र होता है, ब्लू मून कहते हैं उसको, हाँ मतलब हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वंस इन अ ब्लू मून, क्योंकि बहुत रेयरली होता है वो। तो जब आषाढ़ महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है, मतलब 2 आषाढ़ मात होते हैं, उस महीने में उस साल में जगन्नाथ जी अपना शरीर बदलते हैं। तो सबके लिए खुशखबरी यह है, नोट करके रखना डायरी में, हाँ आने वाले 2015 साल में जगन्नाथ जी अपना शरीर बदली करेंगे। 1996 में उन्होंने शरीर बदली किया था, अभी 2015 में बदली करेंगे 19 साल के बाद। और ये जो विधि है उसकी बहुत सिस्टमेटिक विधि होती है, ये पंचांग होता है ना वो कैलेंडर, उससे पता चलता है किस साल में आने वाला है आषाढ़ महीना। तो भगवान का शरीर जो है ना वो 6.5 फुट का होता है, बहुत बड़ा होता है वो, और बहुत भव्य होता है, चौड़ा मोटा होता है। तो उसको अगर महीना आने वाला है आषाढ़ महीना और उसमें अगर बदली करने का समय आता है तो पहले मूर्ति को वो चेक करते हैं कि मूर्ति में कोई प्रॉब्लम है, कुछ खराब हो गया है, कुछ नुकसान हो गया है, तो फिर वो तय करते हैं कि बदली करना है। अगर मूर्ति सही है तो आषाढ़ महीना आने पर भी वो चेंज अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं कि नहीं करना है। तो इसलिए हर आषाढ़ अधिक मंथ में जगन्नाथ जी शरीर बदली करेंगे ऐसा नहीं है, इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अधिकतर वो करते हैं। तो 2015 साल में आषाढ़ महीना अधिक आने वाला है, और आपके लिए खुशखबरी ये है कि उस समय भगवान का नया शरीर का दर्शन करने के लिए भक्ति विधान्त हॉस्पिटल से यात्रा जाएगी जगन्नाथपुरी को, हाँ जिनको जिनको आना है वो सब लोग आ सकते हैं, बहुत सुंदर। और रामनवमी होती है चैत्र शुद्ध नवमी को, और उसके अगले दिन दशमी को ये विधि आरंभ होता है। कैसे आरंभ होता है कि जगन्नाथ मंदिर के जो चीफ पुजारी हैं उसमें से 28 लोग निकलते हैं, उनको एक माला पहनाते हैं जगन्नाथ की पूजा करके, उसको कहते हैं आज्ञा माला, जगन्नाथ जी से आज्ञा लेकर उसको 28 लोगों को पहनाते हैं, और फिर वो पैदल 50 किलोमीटर चलकर जाते हैं मंगला देवी के मंदिर में। मंगला देवी का मंदिर जो है बहुत पास में है, उधर 50 किलोमीटर दूर है, और ये सब लोग चलकर जाते हैं मंगला देवी के मंदिर में जिस साल ये तय होता है। हाँ उसके बाद में वो मंगला देवी की बहुत अच्छी पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर विधि होता है, और यज्ञ होता है, पूजा होती है। और इन लोगों का ना जब ये 50 किलोमीटर चलकर वहाँ पहुँचते हैं 28 लोग, तो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ के पुजारी बाहर आते हैं, बैंड लेके आते हैं, ढोलक मृदंग करताल, गीत गाते हुए उनका स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, उनको माला पहनाते हैं मंगला देवी की, स्वागत करके मंदिर में लेके जाते हैं। फिर जब मंगला देवी की पूजा होती है सबके साथ में मिलकर, बहुत अड़िया उत्सव होता है, और फिर ये लोग उसी मंदिर में रुकते हैं रात को। और रात को जब रुकते हैं वहाँ पर, तो उस रात को जब भी 2-3 दिन के अंदर मंगला देवी चीफ पुजारी के स्वप्न में आती है, और चीफ पुजारी के स्वप्न में आकर वो बताती है कि इस बार जिस लकड़ी से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की मूर्ति बनेगी वो लकड़ी किस जंगल में मिलेगी, वो पेड़ कहाँ पर है, उसका स्वप्न में दर्शन देती है उनको और गाइड करती है कि किस दिशा में जाना है आपको। वो स्वप्न आते ही अगले दिन फिर दोबारा पूजा होती है, समझो 3 दिन के बाद भी स्वप्न नहीं आया तो और 3 दिन पूजा मंगला देवी की करते हैं, और उसके बाद स्वप्न आता ही आता है। तो सबसे सीनियर पुजारी है, उसको स्वप्न आता है, वो मंदिर में सोता है, स्वप्न आता है, उसको मार्गदर्शन मिलता है कि कहाँ पर जाना है, तो अगले दिन फिर पूजा होती है और सब लोग उसमें से जाने की तैयारी करते हैं। उनको बहुत सारी विधि है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, लेकिन पूजा वगैरह करके वो निकल जाते हैं वहाँ से, और जिस दिशा में उनको गाइडेंस दिया गया है उस दिशा में जाना आरंभ करते हैं। ऐसे कहा है कि उनको कम से कम 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते लग सकते हैं जंगल में ढूंढने के लिए, और हमेशा एक गांव का नाम है कोकटपुर, कोकटपुर, उसी जंगल में ये मूर्ति की लकड़ी जो है प्राप्त होती है। मतलब क्या होता है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है, और बलदेव जी की मूर्ति है, सुभद्रा जी की मूर्ति है, और चक्र है, चार चीज़ है ना, चार व्यक्ति हैं, तो चार पेड़ वहाँ पर रहते हैं, और उस चार पेड़ को पहचानने के लिए उस पर लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं उसके ऊपर, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो वो चिन्ह क्या है, जगन्नाथ जी का मूर्ति जिस वृक्ष से बनना है, जिस पेड़ से बनना है, उसका कलर डार्क लाल होना चाहिए, और उस पर शंख चक्र पद्म गदा के चिन्ह होने चाहिए, उसके 4 ब्रांच होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, और उसके आसपास एक पॉन्ड होना चाहिए, पानी का सरोवर, हाँ जलाशय बोलते हैं उसको, उसके पास में साधु की कुटिया होनी चाहिए, उसके पास में 3 पर्वत होने चाहिए, ये सबके आसपास, हाँ चारों पेड़ों के आसपास 3 पर्वत होने चाहिए, फिर उसके पास में एक नाग का बिल भी होना चाहिए, कोबरा, या तो कोबरा का दर्शन होना चाहिए या तो कोबरा का बिल वहाँ पर दिखना चाहिए कि वहाँ पर उसमें होगा। उस पेड़ पर कोई भी पंछी का घर नहीं होना चाहिए, उस पेड़ पर कोई भी वेली नहीं आना चाहिए, हाँ यानी क्रीपर, यानी कोई और बाहर का कोई पेड़ और वेली उसके अंदर आना नहीं चाहिए। बहुत अद्भुत चीज़ है ये, इतना बड़ा पेड़ होता है लेकिन उसके अंदर एक भी पंछी का घर नहीं होता है उसके अंदर, ये भगवान के अरेंजमेंट है। और उसके आसपास एक चींटियों का पहाड़ भी होना चाहिए, उसको कहते हैं एंट हिल, उस पेड़ के पास में होना चाहिए, चारों पेड़ के पास में ये सब कुछ होना चाहिए कॉमन। क्या क्या बताया मैंने आपको, 3 पर्वत होने चाहिए, एक नदी होनी चाहिए, एक पौंड होना चाहिए, एक चींटियों का पहाड़ होना चाहिए, नाग का बिल होना चाहिए, हाँ, और जगन्नाथ जी का जो पेड़ उसको 4 ब्रांच होनी चाहिए, जो बलदेव जी का पेड़ है उसमें 7 ब्रांच होनी चाहिए, और बलदेव जी का जो पेड़ है उसके अंदर गदा और हल के निशान होने चाहिए, और जो सुभद्रा जी का पेड़ है उसको 5 शाखा होनी चाहिए और उस पर कमल का चिन्ह होना चाहिए। मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स है, आपको लगेगा कि कैसे होंगे ये सब कुछ ऐसा, तो उसी पेड़ के ऊपर उसके होता ना, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी शाखा होती है ना बीच में, मेन ट्रंक, उसके ऊपर ये बड़े बड़े चिन्ह मिलेंगे आपको, चक्र के मिलेंगे और गदा के मिलेंगे, हाँ शंख के मिलेंगे, कमल के मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो 3 लोगों का मैंने बताया आपको, और फिर चक्र का जो पेड़ है वो लाल रंग का होना चाहिए और उसके 3 शाखा होनी चाहिए और उस पर चक्र का निशान होना चाहिए। इस प्रकार से वो ढूंढते हैं और वो कोकटपुर के गांव में अपना तंबू लगाते हैं और रोज़ रात दिन से लेकर सुबह से लेकर रात तक ढूंढते रहते हैं, क्योंकि सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पेड़ उनको मिलेंगे लेकिन सारी कंडीशन पूरी नहीं होंगी तो कैंसिल, नया पेड़ देखना पड़ता है। और जब चारों पेड़ उनको मिल जाते हैं तो उसके बाद में उस चारों पेड़ के आसपास अपना तंबू लगाते हैं, वहीं जाके रहने का इंतज़ाम करते हैं और वहाँ पर यज्ञ करते हैं, दे मेक अ फायर सेक्रीफाइस, और वो सभी पेड़ों की पूजा करते हैं, नारियल अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, और जब ये पार्टी खोजते रहते ना तो सारे गांव के लोग उनको सहायता करते रहते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनका देखभाल करते हैं, और जब ये पेड़ मिल जाते हैं तो सब लोग अपने घर से भोग लेके आते हैं। हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर जन्माष्टमी को, सब लोग भोग लेके आते हैं ना भगवान को, तो सारे गाँव के लोग जो हैं वो भगवान के लिए भोग लेके आते हैं, और वहाँ पर बहुत भव्यता से यज्ञ होता है, पूजा होती है, आरती होती है, वो नरसिम्हा स्तोत्र गाते हैं, विष्णु सूक्त गाते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र गाते हैं, ऐसे अलग अलग जगन्नाथ के लिए, बलदेव जी के लिए, सुभद्रा के लिए, चक्र के लिए अलग अलग प्रकार के स्तोत्र गाते रहते हैं। और वो पूरा होने के पश्चात जो चीफ पुजारी है, अब इसमें और लंबी लंबी विधि है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वो निकलते हैं वहाँ से, मंदिर से निकलते हैं ना पहली बार, सबसे पहली बार मंगला देवी के मंदिर जाने के लिए, तो ओडिशा के राजा जो हैं गजराज गजपति, उसकी तरफ से इनको सबको शॉल अर्पण करते हैं। तीन मेन पुजारियों को 6 फीट की सिल्क का शॉल, और बाकी सब लोगों को 3 फीट का सिल्क का शॉल अर्पण करते हैं। फिर जब मंगला देवी के मंदिर से निकलते हैं तो राजा की तरफ से उनको सिल्क का फेटा पहनाते हैं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। राजा के उपलक्ष्य में, जगन्नाथ जी के उपलक्ष्य में, उनके प्रतिनिधि के रूप में सब लोग निकलते हैं ना, तो उनको सम्मान के साथ में माला पहना के, दक्षिणा दे के, उनको सम्मान करके फिर उनको निकालते हैं। तो ये लोग जो हैं ये विशेष लोग होते हैं, ये जन्म जन्मांतर तक उनकी पीढ़ी के जितने भी लोग हैं वो केवल जगन्नाथ जी का जब समय आएगा शरीर बदली करने का तब वो ढूंढने में सहायता करते हैं, और ढूंढ के निकाल के वापस मंदिर में लेके आते हैं। एक पीढ़ी खत्म हो गई, दूसरा उनके बच्चे फिर उसमें आ जाते हैं, उनको घर में से ही पूरा घर में ट्रेनिंग मिलता है कंप्लीट, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, मन की तैयारी होती है, पूरा डिटेल मालूम होता है कि हमारी पीढ़ी में हमारी सेवा क्या है। इनको शबर कहते हैं, शबर यानी वो ब्राह्मण नहीं होते, उनके पुजारियों को दायित्व कहते हैं, और ये दायित्व लोग जो हैं ये सेवा करते रहते हैं बड़े प्रेम से। ऐसे कहते हैं जब ढूंढते ना वो 3 हफ्ते तक ढूंढते रहते हैं, 4 हफ्ते तक, 5-6 हफ्ते तक, तो केवल दिन में एक बार भोजन करते हैं, कम से कम खाना खाते हैं, एक ही बार खाते हैं, और दिन भर ढूंढते रहते हैं भगवान को, और साथ में कीर्तन, भगवान की प्रार्थना, स्तोत्र गाते रहते हैं। मतलब क्या है, कोई पिकनिक नहीं है जंगल में जाने के ढूंढने की, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, तो टाइम लिमिट भी होता है। हाँ, रामनवमी के बाद में 2nd डे निकलेंगे तो मंगला देवी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे, वहाँ पर सपना आएगा, फिर उसके बाद पूजा होगी, फिर निकलेंगे, फिर चल के जाएंगे, कोई पर कई व्हीकल, कोई मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, साइकिल कोई इस्तेमाल नहीं करते, सब जगह पैदल जाना पड़ता है, इतना सारा अंतर पैदल जाना है, तंबू में रहना है, अगली रात वापस निकलना है, फिर खाना बनाना है, फिर निकलना है, फिर कोकटपुर में पहुंचना है, फिर वहां पर तंबू डालना है, फिर रोज़ वहां से आगे जाकर वापस लौट के आना है, फिर वहां से आगे जाकर फिर लौट के आना है, बहुत कर्रा काम होता है, बहुत कठिन काम होता है। भगवान के लिए उनके भक्त जो है बड़े प्रेम से काम करते हैं। और जब ये सेरेमनी यज्ञ पूरा होता है तो चीफ पुजारी जो है उसको सोने की जो होती है ना कुलाड़ी, इतनी सी होती है, वो सोने की बनाते हैं, प्योर सोने की, और वो सोने की कुलाड़ी से मंत्र बोलकर ये पेड़ पर उसका आघात करते हैं, तोड़ने के हिसाब से ऐसे करते हैं, फिर वो 7 प्रदक्षिणा करते हैं, फिर चांदी की कुलाड़ी से फिर एक बार उसमें आघात करते हैं, फिर 7 प्रदक्षिणा करते हैं, फिर रियल लोहे की कुलाड़ी देते हैं बड़ी, और फिर भगवान से वापस प्रार्थना करते हैं कि अभी आपका जो शरीर है, पेड़ जो है, हम काटा जाएगा, और फिर कीर्तन करते हुए, गीत गाते हुए उस पेड़ को काट देते हैं। पहले काटते हैं बलदेव जी का, पहले चक्र का काटते हैं, फिर बलदेव जी का काटते हैं, फिर सुभद्रा का काटते हैं, और लास्ट में जगन्नाथ का पेड़ काटते हैं। और जो शाखा होती है उसमें से मेन जो शाखा है, जैसे मैंने कहा कि जगन्नाथ जी वाले पेड़ को 4 शाखा होती है, हाँ, कोई सुना नहीं है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगन्नाथ जी की पेड़ की 4 शाखा होती है, बलदेव जी की 7 शाखा होती है, चक्र की 3 शाखा होती है, और सुभद्रा जी की 5 शाखा होती है। इसमें से मेन शाखा जो है, जैसे सुभद्रा जी का शरीर जो है उसमें हाथ तो है नहीं, तो सुभद्रा जी की शाखा जो है सभी वहाँ पर जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन बलदेव जी और जगन्नाथ जी के दो हाथ है ना ऐसे खड़े खड़े, तो क्या करते हैं कि मेन जो ट्रंक है उसको काट कर ले लेते हैं, 2 मेन शाखा जगन्नाथ जी के पेड़ से लेते हैं, 2 मेन शाखा बलदेव के पेड़ से लेते हैं, चक्र का तो हाथ तो कोई है नहीं, तो दो पेड़ों से दो बड़ी बड़ी शाखा जमा कर लेते हैं, बाकी जितनी छोटी शाखाएं हैं सारा इकट्ठा करते हैं और एक गड्ढे में डालकर उसको बरी कर देते हैं। और फिर ये लोग उसको अलग अलग रंगी बिरंगी वस्त्रों से बांध देते हैं। बड़े जो बीच का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा जो है 6.5 फुट का लंबा हिस्सा होता है, बड़ा चौड़ा, इतना मोटा होता है, उसको अलग अलग कपड़ों से बांध देते हैं, उसकी आरती पूजा करते हैं। और फिर तीन प्रकार के पेड़ होते हैं, एक होता है केंडू, एक होता है जो नाम उसके याद नहीं आते गांव वाले, ये पेड़ कहते हैं कि वहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये पेड़ जो होते हैं, एनीवे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तीन प्रकार के पेड़ से लकड़ी की रथ बनता है। और एक लकड़ी के रथ पर जगन्नाथ जी का जो लकड़ी है, दारू ब्रह्म कहते हैं उसको, एक पर बलदेव जी का, एक पर सुभद्रा जी का और एक पर चक्र का, ऐसे सवार करते हैं, सबको बांधते हैं कपड़े में से, और फिर वहाँ से यात्रा शुरू होती है। उसी को, उस रथ को भी हाथ से ही खींच कर लेके आते हैं, और वहाँ से लेकर जब मंदिर तक पहुँचते जगन्नाथ के, तो रास्ते में लोग रोक रोक के उनको आरती अर्पण करते। हमारे कैसे रथ यात्रा में इस नाके पर आरती है, उस मोड़ पर आरती है, उस टर्न पर आरती है, ऐसा होता है ना, वैसे जगह जगह पर रुक रुक के उनकी आरती होती है, उनको फूल अर्पण करते, भोग लगाते हैं और गीत गाते हुए सब लोग लौट के आते हैं। बहुत टाइम लगता है पहुँचने के लिए। और ये जो पूरा कार्यक्रम है लकड़ी को वापस लेके आने तक का कार्यक्रम जो है, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा तक होना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा मतलब कितना दिन हो गया काउंट करो, चैत्र शुद्ध दशमी के दिन निकले ना, फिर चैत्र के 20 दिन, फिर वैशाख के 30 दिन, 50 दिन हो गए ना, और ज्येष्ठ के 15 दिन, कितने हो गए, 65 दिन के अंदर ये पूरा काम होना चाहिए। पूरा मंगला देवी में जाना, वहाँ पर रहना, सपना आना, वहाँ से चल के जाना जंगल में, वहाँ ढूंढना, ढूंढ कर यज्ञ करना, फिर पूजा, फिर पाठ, फिर काटना, फिर उसको बरी करना, फिर लकड़ी के चक्र बनाना, वहाँ पर रथ बनाना, वो सारा काम 65 दिन में पूरा होना चाहिए, यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में वापस लौटने तक। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पे उनको लास्ट पहुँचना ही पहुँचना है, पहले पहुँच सकते हैं लेकिन लास्ट उनको ज्येष्ठ पूर्णिमा के तक पहुँचना है। जैसे ही वो पास में आते जगन्नाथपुरी के, जगन्नाथपुरी में जाके किसी आदमी को भेजकर खबर करते कि हम आ रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी में मंदिर में इनको जरा हरे कृष्णा, जगन्नाथपुरी में मंदिर में मंडप डालते हैं इनके स्वागत के लिए। ये जो लकड़ी लाने वाले हैं बड़ी बड़ी दारू ब्रह्म, उनको स्वागत करने के लिए बड़ा वेदी बनाते हैं, मंडप डालते हैं, उनको वहाँ पर स्थापन करते हैं। जैसे मंदिर में आते हैं तो मंदिर में पूरा सब लोग मंदिर के बाहर आते हैं, पुजारी जो नहीं गए हुए हैं वाद्य बजाते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, शंख बजाते हैं, ये सारे उद्घोष के अंदर लकड़ियों को अंदर लेते हैं और वहाँ पर स्थानापन्न कर देते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी जो पहले हैं जिनका स्थापना किया गया है, उनका पब्लिक में स्नान होता है। मैंने पहले बताया था ना आपको, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होती है। उस समय पब्लिक में जगन्नाथ जी की पुरानी मूर्ति की स्नान यात्रा होती है, और प्राइवेट में अंदर जो मंडप बनाया है जहाँ पर ये लकड़ी लगाई गई है उनका भी अभिषेक होता है। और उसके बाद तुरंत एक निर्माण भवन बनाते हैं, निर्माण भवन, बड़ा निर्माण भवन, वहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति का जो काम है ना करने का, क्या कहते हैं उसको, मूर्ति काम, स्कल्पचर, वो कारपेंटर द्वारा चालू होता है। और इसकी भी जाति फिक्स है, कौन लोगों को ये करना है, वो पीढ़ी पीढ़ी से वही काम करते हैं। और जैसे विश्वकर्मा आए थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद करके शांति से अंदर मूर्ति बनवाई थी, और उनको उन्होंने कहा था कि डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे, अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं चला जाऊँगा, उसी भावना से वो मंडप को चारों तरफ बंद कर देते हैं। और जो बनाने वाले लोग हैं वो अंदर जाते हैं, और उसका अंदर का काटने का ठोकने का कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए, इसलिए मंडप के चारों ओर कीर्तन मंडली को बिठाते हैं और ज़ोर ज़ोर से वाद्य बजाते हैं ताकि अंदर की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़े। और 3 हफ्ते तक ये जो काम है उसको चलते रहता है, उसको कहते हैं असरा घर, जिसमें ये मूर्ति बनने का काम आरंभ होता है, वो बहुत लंबा समय होता है। और जिस साल में ये मूर्ति बनने का कार्यक्रम हो रहा है उस साल में स्नान यात्रा के बाद मंदिर 6 हफ्ते तक बंद रहता है। आमतौर पे 15 दिन बंद रहता है, लेकिन इस साल में 6 हफ्ते तक बंद रहता है। उस 6 हफ्ते में पूरा मंदिर का वो जो मूर्ति है उसका बनने का काम पूरा हो जाता है। उसके बाद में अमावस्या के दिन, यानी कि ज्येष्ठ महीना जब पूर्णिमा होती है उसके बाद में जब अमावस्या आती है, वो अमावस्या में पूरी जगन्नाथपुरी का लाइट ऑफ हो जाता है ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, और पूरा अंधेरा करके 4 पुजारियों को चुनते हैं, चीफ पुजारियों को, और 4 पुजारियों के हाथ पूरे कपड़े से बांध देते हैं, यहाँ तक आंखें उनकी पूरी बंद कर देते हैं। और जगन्नाथ जी के जहाँ मूर्ति बनाई गई है वहाँ पर पेट में एक गुफा होती है दरवाजे के साथ में, उस गुफा में जगन्नाथ जी का जो प्राण है उसको कहते हैं ब्रह्म पदार्थ, या उसको कहते हैं नाभि ब्रह्म। जैसे अपना है ना शरीर है और आत्मा है, वैसे उस जगन्नाथ जी का होता है नाभि ब्रह्म, ब्रह्म पदार्थ होता है वो, उनके पेट की छोटी गुफा में रहता है। तो पुरानी मूर्ति जगन्नाथ की जगन्नाथ के सामने, सुभद्रा की सुभद्रा के सामने, बलदेव की बलदेव के सामने, और चक्र के सामने, ऐसे सामने रखते हैं। और 4 पुजारी उस अंधेरी रात में, रात को 12 बजे के बाद में, पूरे हाथ में कपड़ा बांधकर आंख बंद करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। पुरानी मूर्तियां अपने मंदिर के स्थान से निकालकर एक जगह पर लाते हैं, वो वेदी जो बनाई है ना ब्रह्म निर्माण भवन के अंदर, और नई मूर्ति वही है, उनको केवल आमने सामने रखते हैं। फिर बंद आंख में पूरे हाथ में कहीं भी पट्टी, हाथ कहीं भी खुला नहीं है, ताकि वो जो ब्रह्म पदार्थ है उसका स्पर्श हाथ को नहीं होना चाहिए, वो कैसा है वो समझना नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी की पुरानी मूर्ति से वो ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति के पेट की गुफा में उसको डाल देते हैं। फिर सुभद्रा जी का निकालते हैं और नई मूर्ति के अंदर डाल देते हैं। फिर बलदेव जी के अंदर से निकालते हैं और बलदेव जी के नए मूर्ति में डाल देते हैं, और चक्र के चक्र में डाल देते हैं। इस तरह से ये विधि संपन्न होता है। इसलिए अभी तक कहीं पर भी ये सीक्रेट वर्णन आज तक पूरा नहीं हुआ है कि वो ब्रह्म पदार्थ है क्या। केवल जो पुजारी उस मूर्ति को बनाते हैं उनके घरों में, फैमिली में अंदर ही ये नॉलेज होता है कि क्या चीज़ है। किधर भी स्क्रिप्चर नहीं है उसका, किधर भी बुक नहीं है। जगन्नाथ जी के मंदिर में एक बड़ा मंदिर है, उसका नाम है जगन्नाथ शास्त्र मंदिर। उसके अंदर पूरे भुर्ज पत्र पर लिखे हुए शास्त्र हैं और केवल चीफ पुजारी अंदर जाके उसको पढ़ सकता है। पूरा बड़ा कमरा है और उसके बड़ी ऊंचाई तक वो पत्ते इकट्ठा करके रखे हैं, जब कभी ज़रूरत होती है तो अंदर जाकर उसको खोल कर पढ़ते हैं कि क्या करना है। उसी में इसका वर्णन दिया है, और बाकी लोगों के लिए पब्लिक में इसका कोई बुक अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने जिंदा छोटा सा खरगोश, मालूम है खरगोश क्या होता है, रैबिट, उसको हाथ में लिया और जिंदा वो खरगोश कैसे लगेगा आपको हाथ में, वैसे कुछ फीलिंग होता है उसका। लाइफ, प्राण, जगन्नाथ जी का प्राण वो एक मूर्ति से निकाल कर दूसरी मूर्ति में डाल देते हैं, और साथ में उस गुफा में जहाँ पर ये प्राण ट्रांसफ़र करते हैं उसके साथ में कुछ सुगंधित फूल, उसके साथ में कुछ तुलसी पत्र, उसके साथ में गीत गोविंद के गीत लिखे हुए कपड़ा, को कहते हैं गीत गोविंद खंडुआ उसको कहते हैं, मतलब वस्त्र पर। हम देखते हैं ना कोई भक्त लोग कभी वस्त्र में हरे कृष्ण मंत्र लिखते हैं ना पूरा चादर, वैसे उस पूरे वस्त्र पे गीत गोविंद लिखा होता है। गीत गोविंद ये बड़ा काव्य है, कविता है, पूरी भगवान की स्तुति में है, जयदेव गोस्वामी ने उसका लेखन किया है। वो पूरा गीत गोविंद उस कपड़े पर छपा होता है, वो वस्त्र, तुलसी और फूल, और वो प्राण साथ में डालते हैं और वो बंद करते हैं लकड़ी से, गुफा बंद कर देते हैं। और जब पुरानी मूर्ति से ये नई मूर्ति में डालते हैं तो पुरानी मूर्ति में भी वहाँ पर ये वस्त्र, तुलसी और फूल वैसा ही फ्रेश मिलता है जैसा वो 19-25 साल जितने भी साल पहले रखा गया था। ये सबसे बड़ी सीक्रेट बात है। जैसे अभी नया डाल रहे हैं, नया इस नई जगह पर नया तुलसी, नया फूल, नया वस्त्र रखा जा रहा है प्राण के साथ, तो जब पुराने से निकालते हैं तो पुरानी गुफा के अंदर आपको वो वस्त्र मिलेगा, और एक चीज़ है चंदन, वो भी रहता है उसके अंदर। चंदन, तुलसी, फूल, वस्त्र और प्राण सब रहता है। केवल प्राण निकाल के ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन बाकी 3 वस्तु जो है, फूल खास करके और तुलसी पत्ते, जैसे रखे गए थे फ्रेश वैसे ही आपको मिलेंगे उतने सालों के बाद में। फिर वो तुलसी, वस्त्र और चंदन और फूल लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। और 1996 में जो चेंज हुआ था, उस टाइम का जो चंदन, उस टाइम का जो वस्त्र है, मुझे जगन्नाथपुरी के पुजारी ने भेंट दिया है, वो मेरे घर पर है। हाँ, मतलब भाग्य की बात है। हम जो यात्रा में गए थे 2 साल पहले, तो उसने कहा कि आपको हमको एक विशेष भेंट देना है। बोला क्या है विशेष भेंट? बोले जब जगन्नाथ जी का शरीर चेंज हुआ था ना 96 में, तो तब हमारे हिस्से में कुछ प्रसाद आया था, उसमें वस्त्र था और चंदन था, वो आपको देना चाहते हैं। मुझे लगा कि इतनी बड़ी चीज़ वो क्या देगा मुझे, ऐसे ही बोलेगा खाली खुश करने के लिए। तो पूरी यात्रा ख़त्म होने गए तभी लेके नहीं आया। रोज़ मैं वेट कर रहा था कि आ जाएगा आ जाएगा। तो बाद में पुजारी ने कहा कि हम ला के देंगे आपको, चिंता मत करो, आप देंगे आपको। मुझे लगा ऐसा ही खुश करने के लिए बोल रहा है। यात्रा भी ख़त्म हो गई, हम लोग सब लोग बस में बैठ गए जाने के लिए स्टेशन के लिए, तो बस भी निकल गई। अब लास्ट में मेरी कार जो है वो निकल रही थी, तो जब कार शुरू होने लगी थी, भागवा के पंडा लेके आया, प्रभु जी रुको रुको, आपको देना था ना, वो देखे लेके आया हूँ। तो वो गीत गोविंद खंडुआ और चंदन लेके आया, बोला आपके लिए प्रसाद। तब मुझे यकीन हुआ कि वो सच बोल रहा था, उसको हृदय से उस बात को देना था। तो ये बड़ी क्या कहते हैं ना उसको, बहुत दुर्लभ चीज़ है। तो कभी मौका आएगा तो आज उनको लेके आना चाहिए था मुझे, भूल गया मैं। आप मुझे कोई याद करें अगली बार, अगली मंगलवार को मैं लेके आऊँगा, और सबको आपको सर पे लगाने का उसका भाग्य मिलेगा। हाँ, प्रसाद जो है सबको सर पे लगा सकते हैं। गीत गोविंद का वस्त्र है और चंदन है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन घर में हमने संभाल के रखा है उसको, हमेशा प्रणाम करते हैं उसको। उसके बाद में ये मूर्ति जो है, इसको कहते हैं कि मूर्ति को धष्ट पुष्ट करने का कार्यक्रम होता है। लकड़ी की मूर्ति बनते ना, तो कहते हैं कि 84 इंच जगन्नाथ की मूर्ति होती है, 84 इंच। उसको कहते हैं यव। यव यव का मतलब क्या होता है? बीच वाली उंगली के अंदर 3 हिस्से होते हैं ना, ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। बीच वाला हिस्सा पुजारी का हाथ का बीच वाला उंगली का बीच वाला हिस्सा कितना लंबा है, उसको एक यव कहते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच का होता है। तो ऐसे 84 यव यानी 84 इंच की लंबी जगन्नाथ की मूर्ति बनती है, और उतनी ही 84 यव की लंबी मूर्ति बलदेव जी की बनती है, और उसमें कुछ एक 48 इंच की लंबी मूर्ति सुभद्रा जी की होती है, और चक्र की भी कुछ ऐसी ही शायद 48 इंच की बनती है। और उसके बाद में दो हाथ जो है ना जो बनाते हैं, वो एक लकड़ी में पूरा शरीर बनता है, और जो दो हाथ उनके हैं वो मैंने कहा था ना, ब्रांच जो दो दो लेके आए हैं वो उसको जोड़कर बना देते हैं। तो दोनों जो हाथ जितने बाहर निकले हुए हैं और दोनों की लेंथ मिलाकर उनकी ऊंचाई की तरह होती है, मतलब 42 इंच के दो हाथ होते हैं, और दोनों की अगर आप ऐड करेंगे उसको जोड़ेंगे तो वो 84 इंच बनेगी। तो उनकी लंबाई, उनका हाथ जो है वो उनके लंबाई के आधा होता है। समझ में आया आपको? हरे कृष्णा। तो उसके बाद में उसको वो लेप लगाते हैं, वस्त्र लगाते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि वो शरीर को हष्ट पुष्ट करने की भावना से उनको विधि करते हैं, और उसके बाद में वो मूर्ति को पेंट करने के लिए भेजते हैं। फिर जगन्नाथ जी का शरीर काला, बलदेव जी का गोरा और सुभद्रा जी का पीला रंग का पेंटिंग होता है पूरा, जिस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, उस तरह से पूरा उनका एक सेपरेट कास्ट होती है, सेपरेट लोग होते हैं, वो खाली उनका काम पेंटिंग करने का है। जब भी आएगा टाइम उनका शरीर चेंज करने का, तो पेंटिंग करने की उनकी सेवा होती है, तो वो पेंट करते हैं। और पेंट करने के बाद में फिर आषाढ़ महीने का या अधिक मास जो है वो समाप्त हो जाता है। ये पूरा काम जो है मूर्ति बनाने का, फिर वो हष्ट पुष्ट करने का, मूर्ति को अच्छा सामान लगा के जोड़ के उसके बाद पेंट करके, ये सब करके पूरा अधिक महीना जो आषाढ़ महीने का है वो पूरा महीना यही काम चलते रहता है। फिर आषाढ़ महीना जब ख़त्म होता है, तो जो निज आषाढ़ है, मतलब एक होता है अधिक आषाढ़, एक होता है निज आषाढ़, ये मैंने इस साल में भी आएगा, एक अधिक भाद्रपद आएगा और एक निज भाद्रपद आएगा, मतलब दो भाद्रपद आएंगे, एक अधिक वाला और एक ओरिजिनल। तो जो निज आषाढ़ है उसके सेकेंड डे रथ यात्रा होती है। तो प्रोग्राम शुरू हुआ था नवमी से, रामनवमी के अगले दिन ही कार्यक्रम शुरू हुआ था। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मूर्ति वापस आ गई, लकड़ी आ गई। ज्येष्ठ पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या और अधिक आषाढ़, 1.5 महीना उनको मिलता है पूरा मूर्ति बनाने में, और उसको जो भी उसका विधि है वो पूरा करने में उनको 1.5 महीना मिलता है। और 1.5 महीने के अंदर ये पूरा होना ही होना है। और उसी समय पे रथ यात्रा के रथ भी बाहर बन रहा है, उसको 3 महीने लगते हैं। हाँ, कभी शुरू होता है उसका काम जब अक्षय तृतीया होती है ना, वैशाख शुद्ध तृतीया, उस दिन रथ बनाने का काम शुरू होता है। इस्कॉन की तरफ से एक जंगल में पूरा 100 एकड़ जमीन इस्कॉन ने लिया है, हमारे संस्था ने, और वहाँ पर 60,000 फंसी नाम के लकड़ी के पेड़ लगाए गए हैं, और उसमें से 600 पेड़ हर साल रथ यात्रा की रथ बनाने में खर्च होते हैं। तो 600 पेड़ अगर काटने के लिए रेडी होने चाहिए तो उन्होंने 60,000 पेड़ लगा के रखे हैं। तो वो बढ़ेंगे ना, छोटे होंगे, बड़े होंगे, बड़े होंगे, तो हर साल किसी भी हिसाब से 600 पेड़ बड़े से बड़े तैयार एडल्ट वहाँ पर मिलने चाहिए। तो इसको हमने 100 एकड़ लैंड लिया है और गवर्नमेंट में इसको सपोर्ट भी किया है, और गवर्नमेंट के सपोर्ट से, एड से, हेल्प से इस्कॉन ने ये प्रोजेक्ट पूरा अपने हाथ में लिया है। ज़िंदगी भर इसके आगे हर साल रथ यात्रा का रथ बनाने के लिए लकड़ी जो है फंसी की, वो हमारे जंगल में आती है। मालूम था आपको ये बात? हरे कृष्णा। तो अक्षय तृतीया से लेकर आषाढ़ के द्वितीया तक रथ बनाने का कार्य जो है वो पूरा होता है। हाँ, पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, हाँ, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने एक किताब लिखी है, हाँ, श्री क्षेत्र परिक्रमा, उसके अंदर पूरा जानकारी दिया गया है। ये भी एक किताब है, इसका नाम है जय जगन्नाथ, बहुत डिटेल में जानकारी दिया है, बहुत ही डिटेल में, बहुत सुंदर वर्णन है इसके अंदर, किस तरह से जगन्नाथ जी का पूरा कंप्लीट इतिहास दिया है उसके अंदर। फिर आषाढ़ एक द्वितीया के दिन रथ यात्रा होती है, उसके पहले दिन नेत्रोत्सव होता है और रथ यात्रा होती है। ऐसे कहते हैं कि आम तौर पर रथ यात्रा में 10 लाख लोग पहुंचते हैं, लेकिन जिस साल में जगन्नाथ जी का शरीर बदली होता है उस साल 25 लाख लोग पहुंचते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि 25 लाख में हम लोग भी होंगे 2015 में। हाँ, आप सबको निमंत्रण है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 19-20 साल के बाद में एक बार होता है। तो हमारा जब तक शक्ति है, जब तक हम कर सकते हैं, तो पता नहीं अगली बार जब होगा तब तक हमारे शरीर में शक्ति कितनी होगी पता नहीं है। इसलिए भगवान की दया से नरसिंह विद्यापति, जो वहाँ के पंडा जी हैं, विद्यापति वंश के हैं, उन्होंने हमको आमंत्रण दिया है, वो हमारा सारा व्यवस्था करेंगे, और मूर्ति को ढूंढने के लिए जाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, मूर्ति को लेकर आने की व्यवस्था भी हमारी साथ में करेंगे। और फिर जब जगन्नाथ जी का मूर्ति बनेगा तो उस समय 1 महीने के लिए वहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं होता है, तो हमारा कुछ काम नहीं, तो हम लौट के आएंगे वापस, फिर 1 महीने के बाद वापस जाएंगे। जब वापस नए भगवान की मूर्ति को प्राण धारणा, प्राण स्थापना, प्रतिष्ठापना जब होगी तब हम वहाँ पहुँच जाएंगे स्नान यात्रा के लिए, और फिर उसी भगवान की रथ यात्रा होगी। मंदिर बंद होगा कुछ दिन के लिए, फिर मंदिर चालू हो जाएगा, रथ यात्रा होगी, तो भगवान गुंडीचा मंदिर जाएंगे, वहाँ पर 9 दिन रहेंगे, वहाँ पर उत्सव करेंगे, फिर रिटर्न रथ यात्रा आएगी, लौट के, उल्टी यात्रा बोलते हैं उसको, बहुड़ा यात्रा बोलते हैं। वो बहुड़ा यात्रा करने के बाद में अगले दिन होता है शुनावेश, भगवान को सोने का वेश बनाकर श्रृंगार करते हैं और अगले दिन भगवान मंदिर में प्रवेश करते हैं, उस दिन हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बीच जब मंदिर बंद होगा या मंदिर गुंडीचा मंदिर में शिफ्ट हो गया होगा, उसमें हम लोग रेमुना, साक्षी गोपाल, हाँ, शीरचोर गोपीनाथ, मंगला देवी का मंदिर, अलड़नाथ, ऐसे सारे स्थानों का दर्शन करेंगे जगन्नाथपुरी का, तो सारा समय बहुत आनंद से बीतेगा। तो आप सबको निमंत्रण है कि आप सब लोग आइए। जगन्नाथ जी की विशेषता है, कोई भी भगवान का विग्रह चेंज नहीं होता है, केवल जगन्नाथ जी का विग्रह है। हाल ही मुझे पता चला कि नंदगांव में हमारा जब कैंप चल रहा था फरवरी महीने में, तो हमने सुना कि नंदगांव में कृष्ण बलराम की जो मूर्ति है उसका भी पेंटिंग हो रहा है। तो मुझे लगा आश्चर्य हो गया, अरे ये तो पत्थर की मूर्ति तो पेंटिंग कैसे करते आप लोग। तो पहली बार उन्होंने बताया कि नंदगांव की जितनी मूर्तियाँ हैं, कृष्ण है, बलराम है, नंद महाराज है और यशोदा माई है, बाजू में राधा रानी खड़ी है, यहाँ पर धन सुखा मन सुखा खड़े हैं, श्रीदामा मधुमंगल, ये सारे जितने भी विग्रह हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं, जैसे दारू ब्रह्म कहते हैं उसको, दारू के बने हुए, दारू मतलब लकड़ी। तो कुछ साल के बाद में वो सारे मूर्ति जो है वो मंदिर के बाहर में एक मंडप में लेके आते हैं, और वो मंडप में लेके आकर पूरा नया पेंटिंग करते हैं। जब नया पेंटिंग होता है तो भगवान को घूमने का दिल करता है। तो जगन बलदेव सुभद्रा सॉरी कृष्ण बलराम की जो मूर्तियां हैं वो लेकर कभी मोती कुंड, कभी पावन सरोवर, कभी किधर, कभी वृंदा कुंड, कभी झील कृष्ण कुंड, कभी आशेश्वर महादेव के सारे पवित्र स्थानों पर मूर्तियों को घूमने लेके जाते हैं। जब नरजी होते घूमने लेके जाते हैं, वापस लौट के तो उनका पेंटिंग होता है, फिर मूड आ गया तो भोग लगाते हैं, उनको घुमाने लेके जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं, और फिर बहुत दिन के बाद में उनका एक तिथि होता है, उस तिथि में उनका पेंटिंग पूरा कर कर कृष्ण बलराम नंद महाराज यशोदा सबकी मूर्तियों को वापस मंदिर में स्थापना करते हैं, और फिर भक्तों का भीड़ होता है वहाँ जहाँ जमा, बहुत चमकदार भगवान फ्रेश होकर दर्शन देते हैं। तो हमारा भाग्य था इस समय, हम लोग कैंप में बरसाने में उस समय थे वहाँ पर, तो जब भगवान का मंदिर का दर्शन होता, ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथ जी जैसे रथ में आते बाहर, तो उस दिन वहाँ पर रथ यात्रा में जब वो रथ में बैठे हुए हैं तो दुनिया का कोई व्यक्ति उनको जाकर गले मिल सकता है। वैसे ही नंद महाराज के मंदिर में कृष्ण बलराम को जब उनका पेंटिंग होते रहता है लोग जाकर उसको गले मिल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इसी साल नंद भवन के जितने पुजारी हैं गोस्वामी जी हैं उन्होंने मीटिंग करके ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, तो इस साल लास्ट बार कृष्ण बलराम को लोगों को गले मिलने का मौका मिला, हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाए उस समय तक। लेकिन इस अगली साल जब भी होगा, ये कभी जब भी होगा तभी मूर्ति बाहर आएगी, लेकिन उनको गले मिलने का चांस किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग गलत इस्तेमाल, कोई शराब पी के आता है, कुछ करता है, उसको देखकर उन्होंने ये विधि बंद कर दिया है अभी। लेकिन भगवान का बड़े पास से दर्शन बाहर हो सकता है, और फिर भगवान चमकदार फ्रेश बनकर वापस अपने मंदिर में दर्शन देते हैं। तो ये विशेष लीला जो है ये भगवान अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ, जगन्नाथ जी के अलग अलग जो विशेषताएं हैं उसमें एक विशेषता ये है कि भगवान अपना शरीर बदलते हैं। फिर क्या होता है, जब नया शरीर बन जाता है उनका, उसकी रथ यात्रा होती है, वो गुंडीचा जाते हैं, वापस लौट के आते हैं, जो पुराना शरीर जो है जगन्नाथ जी का, बलदेव का, सुभद्रा का और चक्र का, उसका क्या होता है? किसी ने पूछा नहीं मुझे उसका क्या होता है। हाँ, तो उनका एक पीछे लिखा है, एक वैकुंठ नाम की जगह है, मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत बड़ा है, एक छोटा मिनी सिटी की तरह है, टाउनशिप की तरह है, उसके पीछे एक वैकुंठ नाम की बड़ी जगह है, उस वैकुंठ जगह में बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और चारों मूर्तियों को उसमें गाड़ देते हैं और श्राद्ध कर्म भी करते हैं, और जो पुजारी है वो रोते भी हैं कि हमारे जगन्नाथ जी गए, और सर मुंडवाते हैं, श्राद्ध करते हैं, और 12 दिन तक केवल फल खाते हैं, व्रत रखते हैं, उसके बाद में जाकर स्नान करते हैं समुद्र में, और वो उनका सूतक जो है वो नष्ट हो जाता है, और उस ज़मीन को माटी डालकर बंद कर देते हैं। जब अगली बार जब नई मूर्ति बनती है और नई मूर्तियों पुरानी मूर्तियों को गाड़ने का समय आता है, तभी जब खड्डा खोदते हैं तो पुरानी मूर्ति का जरा सा भी अवशेष आपको ज़मीन में नहीं मिलेगा, नथिंग इज़ देयर, कोई लकड़ी बची हुई है ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, पूरा ज़मीन जो है जितना भी गड्ढा खोदेंगे, 10 फुट का गड्ढा वो कहते हैं, 4 मीटर का गड्ढा खोदते हैं, 4 मीटर मतलब कम से कम 12 से 15 फुट का होता है, 12-14 फुट का, उतना गड्ढा जब खोदते हैं तो उतनी बड़ी बड़ी 6.5 फुट की मूर्तियाँ डालते हैं उसके अंदर और गाड़ देते हैं उसको, लेकिन जितने भी साल के बाद में वो वापस दफनाने का समय आता है उस समय और पुरानी मूर्ति की कोई भी अवशेष वहाँ मिलता नहीं है। और इस तरह से फिर पुजारी लोग शोक बनाते हैं, सूतक रखते हैं, सर मंडवाते हैं, फिर स्नान करके शुद्ध होकर फिर अपने अपने सेवा में लग जाते हैं। इस तरह से पूरा नवकलेर का विधि जो है वो कभी 17 कभी 18 कभी 19 साल के बाद में पूरा हो जाता है, 1 साल में 8 साल में हुआ था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है किसी का? एक बात मैंने बताना, माता जी याद कर रहे मुझे, कि जो पुजारी को स्वप्न आता है, जिसके स्वप्न में मंगला देवी आती है और बताती है कि इस साल जगन्नाथ जी की मूर्ति जिस लकड़ी से बनने वाली है उस लकड़ी का पेड़ कहाँ मिलने वाला है, वो स्वप्न में दिखाती है, उस पुजारी का उसी साल में अंत हो जाता है और वो भगवान के धाम में चला जाता है। उसका ये परम भाग्य है, ये उसका प्रिविलेज है, ऑनर है उसका, कि जिस पुजारी को स्वप्न में सबसे बूढ़ा और सीनियर पुजारी था, चीफ पुजारी, उसी के स्वप्न में मंगला देवी आती है। फिर उसके नेतृत्व में जो जैसे वो बोलेगा वैसे गाइडेंस में ही पूरा सर्च होता है, पूरा शोध उसके गाइडेंस में होता है। जो वो कहेगा जैसे पूजा करना है उसके गाइडेंस में, उसके पूरे मार्गदर्शन में पूरा विधि होता है। और फिर जगन्नाथ की स्थापना होती है, नाभि भ्रमण ट्रांसफर भी होता है, उसके बाद में रथ यात्रा होती है, वो सब पूरा सेरेमनी उस उत्सव खत्म होने के बाद में उसी साल के अंदर वो पुजारी का देहांत हो जाता है और पुजारी भगवान के धाम जगन्नाथ के धाम चला जाता है। नहीं, उसमें से जो सपनों आया वो पुजारी जाता है खाली, बस नाभि ब्रह्मा जो ट्रांसफर होता है वो चीफ पुजारी के गाइडेंस में चार लोग चुनते हैं, वो चार लोगों को वही चुनता है किसको करना है, वो भी उसमें एक रहता है और बाकी तीन दूसरे रहते हैं। और उनकी पूरी तैयारी करने के बाद में उसके गाइडेंस में वो ट्रांसफ़र काम होता है। और लेकिन शरीर छूटता है केवल एक ही पुजारी का, चीफ पुजारी का। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया इस बात को, कि जब भी जगन्नाथ के मंदिर से ये 28 पुजारी निकलते हैं तो जगन्नाथ जी का प्रसाद, भोजन प्रसाद और फूल प्रसाद, माला प्रसाद लेके जाते हैं, और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मंगला देवी को अर्पण करते हैं, जगन्नाथ जी की माला मंगला देवी को पहनाते हैं। इस तरह से जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उनको जगन्नाथ की बहन माना गया है मंगला देवी को, और वो जगन्नाथ जी के नए शरीर के बारे में स्वप्न देती हैं अपने पुजारी को। और कोई याद दिलाना है कोई बात को? यस, ये भी बात सही है, इनकी बात सही है कि जगन्नाथ जी का वो पेंडिंग जो है ना, वो जितना पेंडिंग है पूरा, वो पूरा पेंडिंग कर देते हैं, लेकिन नेत्र उन्मिलन कहते हैं उसको, नेत्र उन्मिलन, उसके आंखों पर के इस जगह पर पट्टी बांध के रखते हैं, और लास्ट में ये पारा सारा पेंडिंग पूरा हो गया तो आंखों का जो पेंडिंग है वो शिव पुजारी आके करता है। हमारे मंदिर में भी जब भी मूर्ति स्थापना होती है ना, जो कोई गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, ललिता विशाखा, जब भी इनकी नई मूर्ति आई तो वो मूर्ति जब आती है तो वो आँख उनकी पट्टी बांध के आती है, और एक सेरेमनी होता है जिस पर मंत्र बोलकर नेत्र उन्मिलन करते हैं और फिर उसकी आंखें खुल जाती है। उस तरह से इसमें भी वो विधि होता है, और आखिरी जो पेंटिंग है आंखों का पेंटिंग वो पुजारी, चीफ पुजारी करता है, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो पूरा अस्तित्व है इट इज़ ओनली नेत्र, देखने के लिए और दिखाने के लिए वो आते हैं, हमको देखने के लिए और खुद अपने को देखने के लिए वो आते हैं ना, सब कुछ नेत्र पे डिपेंड है। तो एक दिन होता है रथ यात्रा का, पहले उसको क्या कहते हैं, नेत्रोत्सव। फ्रेश जगन्नाथ जी को पेंट करने के बाद में रथ यात्रा के पहले शाम को जो मेन दर्शन होता है पहली बार, वो रात भर चलता है, रात को भगवान सोते नहीं है, उस दिन शयन नहीं करते हैं, रात भर जगे रहते हैं और सबको वहीं से गले मिलना आरंभ कर देते हैं। तो उत्सव का नाम क्या है, नेत्रोत्सव। भक्त लोग उतना दिन मंदिर बंद रहने के बाद में व्याकुल होते हैं, तो पहली बार मंदिर बंद होने के बाद जब एक बार खुलता है तो उस दिन को नेत्रोत्सव कहते हैं, और बहुत बड़ी जनता रात भर वहाँ मंदिर में जाती है और भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान अपने स्थान छोड़कर नीचे उतरते हैं और सबको गले मिलते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का है? एनी क्वेश्चन? ये बहुत अद्भुत कहानी है, ये कहानी किसी भी भगवान के मंदिर के विग्रह के बारे में नहीं होती है। ओके, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।